ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा पर कल रात एक संयुक्त अभियान में कम से कम 14 माओवादी मारे गए। इनमें नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का कुख्यात सदस्य जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। कुल्हाड़ी घाट आरक्षित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पुलिस तथा सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया था। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले और उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में चलाया गया। पिछले करीब 24 घंटे से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास से भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वैश्विक नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के हित और विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वापस अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के उत्सुक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद अस्थि प्रशासनिक आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने अपनी घोषणाओं में प्रवासन पर अंकुश लगाने, कोयले और तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने और 2021 पेरिस जलवायु समझौते सहित पर्यावरण नियमों को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया। एक प्रमुख आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटने का भी निर्देश दिया। ट्रंप ने कोविड के दौरान दिशा निर्देश जारी करने में WHO पर चीन के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया। अमरीकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में मैक्रो रूबियो को देश के 72वें विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। सीनेट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संसद के 119वें सत्र में रूबियो ने 99 मतों से चुनाव जीता। इस बीच भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी अब टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क के साथ सरकारी असक्षमता विभाग के सह अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटों के बाद ही कल राष्ट्रपति कार्यालय ने इन खबरों की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रसल्स में बेल्जियम के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री बोनार्ड क्विंटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने विदेशी व्यापार पर बेल्जियम की महत्वपूर्ण निर्भरता और भारत की गतिशील बढ़ती अर्थव्यवस्था को पारस्परिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। स्विट्जरलैंड के दाओस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। श्री पासवान ने इस अवसर पर कहा कि भारत की प्रगति से समूचे विश्व को लाभ होगा। संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि वे वैश्विक स्तर पर बेहतर सहयोग के उत्सुक हैं और नरेंद्र मोदी सरकार भारत को वैश्विक फूड बास्केट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। नई दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के दूसरे भाग को जारी करते हुए कहा कि पार्टी जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में केजी से स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा देगी। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लिए जाने के बाद कुल 699 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। कल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के विकास में मणिपुर के लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका पर पूरे देश को गर्व है। वहीं मेघालय के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की औद्योगिक प्रकृति के लिए प्रशंसनीय है। त्रिपुरा के लिए श्री मोदी ने कहा कि राज्य राष्ट्रीय प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान का दौरा कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से भी बुकिंग की जा सकती है और उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।